किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आज सुनिए मेरे दोस्त और अजीम कहानीकार सरताज अली रिजवी की लिखी कहानी ट्रांसप्लांट। वाचन है निधि बासु का। आईसीयू में मशीनों की बीप बीप के बीच उनकी आंख खुली तो उनको सारा मामला समझ आया। तभी डॉक्टर और नर्स आए। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स देखी, नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया और आराम करने की हिदायत देकर चले गए। उनकी तीमारदारी अब मशीनें कर रही थीं, जिसे कैमरे के जरिए डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे थे। वो ग्लूकोज की बोतल को एक टक निहारते जा रहे थे, मानो ये बोतल उनकी जिंदगी की जमानत है। इंसान जब तन्हाई में होता है तब उसे अपना गुजरा वक्त और उस वक्त के साथ धुंधलाते चेहरे याद आने लगते हैं, और फिर उन्हीं चेहरों के साथ उनसे जुड़े एहसास याद आते हैं। वो भी आईसीयू में लेटे लेटे सफर कर रहे थे, गुजरे हुए वक्त के खंडहर में।
दादू एक शेर सुनिए ना, बिल्कुल ताजा है।
वो किसी की परवाह किए बगैर धड़धड़ाता बैठक में घुसाया, जहां मशहूर शायर यानी उसके दादा लैपटॉप पर मुशायरा सुन रहे थे।
तुम और शायरी, नामुमकिन। अरे नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है आपके लाल ने। ठीक है सुना, हम भी देखें कि तूने कौन सा तीर मारा है।
ठीक है फिर सुनिए।
जिन लड़कों को जिम में जाना पड़ता है,
अरे लानत है ऐसे शेर पर जिसमें कोई कैफियत कोई बात ना पैदा हो।
तुमने ऐसा वाहियात शेर मुझे सुनाने की हिम्मत कैसे की?
उन्होंने शेर पूरा होने से पहले ही उसे फटकारा।
अरे दादू पूरा शेर सुनिए ना, आपने शेर सुना ही नहीं और लगे मुझे डांटने।
क्या खाक सुनूं जब शेर की शुरुआत ही इतनी वाहियात और फिजूल है।
दादू पूरा शेर एक बार सुन लीजिए, बस एक बार, फिर अगर वाहियात लगे तो जो चाहे सजा दे।
अच्छा चल बातें ना बना, अपना शेर सुना। अर्ज किया है, जिन लड़कों को जिम में जाना पड़ता है, जिन लड़कों को जिम में जाना पड़ता है, उन लड़कों को रोज नहाना पड़ता है। ये शायरी है?
शायरी ही तो है दादू, ठहर अभी बताता हूँ तुझे।
उन्होंने अपनी चप्पल उस तरफ उछाली जहाँ वो खड़ा था, मगर तब तक वो अपनी जगह से जिन्न की तरह गायब हो चुका था।
नालायक नहीं तो जब देखो फालतू की बात, मुझसे तो इसका जन्मों का बैर है।
जाने दीजिए ना बाबा, उम्र के साथ सुधर जाएगा, नीलम ने ससुर को बड़बड़ाते हुए देखकर कहा।
क्या खाक सुधर जाएगा, नाक में दम करके रखा हुआ है कमबख्त ने।
वो 4 साल का था जब इस घर में आया था। नीली आंखों वाला गोरा चिट्टा कबीर सबकी आंखों का तारा बन गया था। ऐसा होना लाजमी था जब दया और प्यार एक साथ हों तो। प्यार इसलिए कि वो था ही ऐसा कि एक नजर में देखने वाले की नजरें खींच ले, मगर जितना खूबसूरत वो चेहरे से था तकदीर उतनी ही बदसूरत। तभी तो दादा दादी माँ बाप का साथ इतनी जल्दी छूट गया। वो तो स्कूल गया था, मगर पहाड़ी के पास बना उसका घर एक गिरती चट्टान की चपेट में आ गया। चट्टान उसके घर को रौंद कर आगे जाकर तो रुक गई, मगर रुक ना पाया कबीर का परिवार। और 4 साल की उम्र में कबीर बचा अकेला इस दुनिया का सामना करने। कबीर दार्जिलिंग लाया गया, जहां उसके दादा जमीर के भाई अमीर रहा करते थे। जमीर और अमीर दोनों थे तो एक ही बाप के बेटे, मगर मां दोनों की अलग अलग थी। अमीर और जमीर दोनों की उम्र में 6 महीने का फर्क था। दोनों एक साथ ही पले बढ़े, मगर एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों दिल से एक दूसरे से मीलों दूर रह गए। तरक्कियों ने हाथ थामा जमीर का और अमीर को शहर के लिटरेरी जगत ने हाथों हाथ लिया। दोनों जब घर परिवार के हुए तो अलग अलग शहरों में बस गए। दोनों में वैसे कोई लड़ाई तो नहीं थी, मगर एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए उनके परिवारों में भी दूरी हुई। जमीर ने कारोबार में करोड़ों कमाए, मगर औलाद एक ही हुई जिसका बेटा कबीर था। अमीर के 3 बेटे थे। बाप ने भले ही जिंदगी शायरी करते हुए निकाल दी, मगर बेटों ने तरक्की की नदी की धार अपनी तरफ मोड़ ली। तीनों का साझा कारोबार अच्छा चलता था। बड़े बेटे की बीवी नीलम थी और उसका एक बेटा समर था जो अपने बाप के साथ फैक्ट्री जाता था। बीच वाला जफर था जिसकी बीवी, एक बेटा जमान और बेटी नायाब थे जो तकरीबन कबीर के ही उम्र के थे। और सबसे छोटा शिहाब जिसके एक बेटी 2 बेटे थे। कबीर को सबने हाथों हाथ लिया सिवाय अमीर के। हालांकि अमीर की बीवी निदा को कबीर बहुत प्यारा लगता था। वो कभी कबीर को प्यार करती भी तो अमीर की निगाहों से बचकर। कभी अमीर उनको अगर कबीर को दुलराते देख भी लेते तो यही कहते कि इसके बाप दादा ने बहुत कुछ छोड़ा है इसके नाम पर, कल को ये तुम्हारी मोहब्बत भूलकर अपनी दौलत और जायदाद में गुम हो जाएगा और तुम बैठी रहना अपनी ममता और प्यार लेकर। ये भला हुआ कबीर के लिए कि जो उसके बाप और दादा ने छोड़ा था वो उसके चाचाओं ने उसके लिए सहेज कर रखा था। अमीर सभी बच्चों से मोहब्बत से पेश आते, मगर कबीर के नाम पर उनकी मोहब्बत का खजाना खाली हो जाता। कबीर पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं था, मगर खराब भी नहीं था। वो अपने भाई बहनों से कम नंबर लाता, मगर वो गेम्स में बहुत अच्छा था। शुरू से ही उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। स्कूल गेम्स में कोई ना कोई मेडल उसके लिए होता ही होता। खेल में ज्यादा रहने की वजह से वो तमाम बच्चों से ज्यादा खाना खाता था, जो कि अमीर को ना पसंद था। वो कहते कि सब बच्चे उठ गए मगर साहबजादे अभी तक प्लेट से ही चिपके हैं। वो जवाब देता, दादू मैं अच्छा बैट्समैन हूं, मेरी विकेट जल्दी नहीं गिरती। हालांकि अमीर के बेटे अमीर को उसके इस रवैये के लिए टोकते भी, मगर अमीर को किसी की सुननी ही कब थी। अमीर के रूखे रवैये ने कबीर को थोड़ा बागी बना दिया था, इसलिए अमीर और कबीर में तनातनी चला करती थी। बाकी सभी भाई बहनों, चाचा चाचियों, यहां तक कि दादी को भी कबीर से कोई शिकायत न होती। बस एक अमीर को ही कबीर में 100 कमियां दिखती थी। ईद पर सब नमाज पढ़कर आए, तभी जमान ने बताया कि दादू सबको ईदी देने के लिए बुला रहे हैं। अमीर ने सभी बच्चों को 50-50 रुपए ईदी दी, मगर कबीर को सिर्फ 20 रुपए का नोट। तब कबीर ने पूछ ही लिया था, दादू सबको 50 और मुझे 20 क्यों? तू खाता भी तो सबसे ज्यादा है, तेरे कुर्ते पायजामे में भी सबसे ज्यादा कपड़ा लगता है। उसूल से तो तुझे ईदी मिलनी ही नहीं चाहिए, मगर दी है उसी में शुक्र कर। रोता हुआ कबीर वहां से चला गया। नीलम को ससुर की ये बात बहुत अखरी। उन्होंने रुआ से कबीर को एक तरफ ले जाके 100 का नोट देते हुए कहा, जितनी ईदी कम लगी हो चची मम्मी देगी बेटा। और कबीर को गले से लगा लिया।
चची मम्मी, दादू मेरे साथ हमेशा क्यों ऐसा करते हैं? उस दिन भी उन्होंने सबको 2-2 रसगुल्ले दिए और मुझे एक।
बेटा तुम स्पोर्ट्समैन हो ना, तुमको ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, इसलिए तुमको 1 दिया और बाकी सबको 2। नीलम ने बात बनाते हुए कहा, अब फटाफट अपने आंसू पोछो और जाओ सबके साथ खेलो। उस दिन के बाद कबीर ने अपने आंसू हमेशा के लिए पोछ लिए, मगर अब वो दादू को छेड़ने लगा था। उसे मालूम हुआ कि दादू को करेले खाना सख्त नापसंद है। बस फिर क्या था, उसने बीज लाकर किचन गार्डन में करेलों की खेती ही कर दी। बेल से लटके करेले देखकर अमीर का पारा चढ़ जाता। ऐसे में अपनी हिंदी की किताब में कहावतें रटते समय कबीर की सुई एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा पर रुक गई। अमीर आग बबूला होकर रह गए और कबीर बार बार उसी कहावत को दोहराता रहा। शाम को तो हद ही हो गई जब कबीर ने सभी भाई बहनों से पूछा, भीड़ का एक रेला आया और भगदड़ मच गई, इस वाक्य में छिपी सब्जी का पता लगाओ, चलो बताओ। सब बच्चे बोले, करेला। अमीर छड़ी लेकर कबीर के पीछे दौड़े, मगर कबीर ये जा वो जा। एक दिन नायाब ने पूछ ही लिया,
कबीर तुम दादू को इतना छेड़ते क्यों हो?
तुम नहीं समझोगी नायाब, ये बड़ों की बातें हैं।
मगर पूछ ही लिया है तो सुनो। मैं इस तरह से दादू को गुनाहों से बचाता हूँ।
वो कैसे?
देखो नायाब, दादू को हमेशा मुझे डांटना ही होता है, चाहे मैं कितना भी सही हूँ। अब मुझ बेगुनाह को डांटेंगे तो बताओ खुदा उनको पाप और उसकी सजा देगा या नहीं?
देगा।
बस इसीलिए मैं उनको छेड़ता हूँ कि जब खुदा उनसे मुझे डांटने की वजह पूछे ना, तो उनके पास मुझे डांटने की वजह हो,
वरना हमारे कमजोर से दादू इतने बड़े गुनाह का बोझ कैसे उठाएंगे?
तो ये बात है, छेड़ की आड़ में दादू का आखिरी वक्त सुधारा जा रहा है।
वक्त का काम गुजरना है और वो गुजर ही जाता है। वक्त के साथ कबीर की भी तालीम पूरी हुई और उसने नौकरी के बजाय बिजनेस चुना और तरक्की भी बहुत की। अब उसकी इंडस्ट्री की ब्रांचें मुल्क के बाहर भी फैल रही थी। कबीर आज घर में है तो कल दूसरे देश में। अमीर का अब उससे सामना कम ही होता था। अमीर भी अब खुश थे, उनको तपाने वाला जो नहीं रहता था। मगर उनकी खुशी उस दिन काफूर हो गई जब उनको डॉक्टर ने लिवर सिरोसिस बताया। काफी दिन इलाज चला मगर अमीर की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी वो डॉक्टर के पास गए थे अपने बेटे जफर के साथ। मिस्टर जफर, हम दवाओं और दूसरे तरीके से आपके पापा का इलाज कर चुके हैं मगर कोई फर्क नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो रास्ता है लिवर ट्रांसप्लांट। मगर डॉक्टर साहब, ये कैसे होगा? कौन डोनेट करेगा लिवर? और फिर लिवर देने वाले की जिंदगी कैसे चलेगी? रिलैक्स मिस्टर जफर, लिवर आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर जिससे आपके पापा का लिवर मैच करता हो दे सकता है। उसके बाद कुछ हफ्तों में डोनर का लिवर वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा, जैसे हमारे नाखून बाल एक बार कटने के बाद फिर बढ़ जाते हैं, लिवर भी उसी तरह बढ़ जाएगा। और रही बात प्राइवेट डोनर की, तो वो आप देखें, उसमें हम या हॉस्पिटल आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने बहुत आसानी से अपनी बात कह दी, मगर अमीर के घर वालों के लिए ये आसान ना था जिनसे लिवर डोनेट करने की उम्मीद की गई। उनमें से कुछ का लिवर मैच नहीं हुआ और कुछ इतना डर गए कि उन्होंने साफ मना कर दिया। अमीर ने घर वालों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि कबीर को इस बारे में कोई ना बताए। उनका ख्याल था कि कबीर और खुश होगा कि चलो इनको इनकी करनी की सजा मिली। अमीर अब कम ही बोलते थे, उनके दिन रात बस इबादत में कटते थे। इसी दौरान एक दिन अफ्रीका से वो आधमका जिसके न आने की दुआ अमीर कर रहे थे। दादू, पुराने वक्त में एक टमटम एटमी नाम के शायर हुए थे, क्या आप उन्हें जानते हैं? कबीर पुराने अंदाज में उनको छेड़ते हुए बोला। कोई जवाब न पाकर उसने अमीर की तरफ गौर से देखा जो लेटे हुए थे। दादू, अब हम इतने बुरे भी नहीं कि आप हमारी बात का जवाब न दें, और ये वजन किस खुशी में कम कर रहे हैं आप? वो उनकी गिरती हुई सेहत को देखकर बोला, फिर चौंकते हुए कहा, ये फाइल किसकी है, देखे तो? क्या ये आपकी जायदाद की फाइल है दादू? अमीर के मना करने के बावजूद कबीर फाइल लेकर पढ़ने लगा, फिर फाइल उठाकर निकल गया। अमीर और कितने ही घंटे गुजरे कल की बाहों में पड़े रहते अगर दरवाजा खुलने की आवाज उन तक ना आती। उन्होंने गर्दन उठा के देखा तो नायाब व्हील चेयर पर बिठाकर कबीर को अमीर के कमरे में ला रही थी।
दादू, आपने हमदम कमर तोड़वी की शायरी पढ़ी क्या? खूब जान गया तुझे, तू मुझे जान के परेशान करता है, मगर अंदर से तू मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। तभी तो किसी और ने नहीं, तूने मुझे लिवर डोनेट किया।
अरे दादू, वो चाहत वात कुछ नहीं है, दरअसल आपको छेड़ना वो मजा है जिसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भी नसीब हो। अगर आप तें बोल जाते तो फिर मेरे बच्चे किसे छेड़ते? अपने फ्यूचर बच्चों का फ्यूचर एंटरटेनमेंट बचाया है मैंने, और कुछ नहीं।
कबीर की बात सुनकर नायाब हंस पड़ी और वो कहता रहा,
शायर बने फिरते हैं और हमदम कमर तोड़वी को नहीं जानते।
आप सुन रहे थे सरताज अली रिजवी की लिखी कहानी ट्रांसप्लांट, वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।